भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18, अध्याय का नाम उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 57, पृष्ठ संख्या 548। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चेत्तः सततम् भव। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चेत्तः सततम् भव। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चेत्तः सततम् भव। शब्दार्थ बोलिए। चेतसा बुद्धि से, सर्व कर्माणि समस्त प्रकार के कार्य, मयि मुझमें संन्यस्य त्याग कर, मत्परः मेरे संरक्षण में, बुद्धियोगम भक्ति के कार्यों की, उपाश्रित्य शरण लेकर, मत चित्तः मेरी चेतना में, सततम् 24 घंटे भव हो। मेरे पीछे अनुवाद बोलिए। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं चेतसा सर्व कर्माणि मई सन्यस्य मत प्रहा, बुद्धि से समस्त प्रकार के कर्मों को मुझ में ही सन्यस्त करके, सन्यस्त मन अर्पित करके मत प्रहा, मेरे परायण होकर के मत चित्ता सततम भव, मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो मत चित्ता। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई ये तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है, यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु ये ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए, इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है, अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं इस श्लोक में। और जहाँ भगवान कहते हैं कि सब कर्मों को मुझ में संन्यास करके, मुझ में ही छोड़ करके, मुझे अर्पित करके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनमाना कर्म नहीं है कि जो मर्जी में आए सो करो और कह दो हम तो कृष्ण में अर्पित कर दिए सब कर्म, ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन साक्षात भगवान के निर्देशन में कर्म कर रहे हैं तो अब साक्षात भगवान तो नहीं है हमारे सामने, जैसे अर्जुन के सामने थे, तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि प्रामाणिक जो शिष्य परंपरा है कृष्ण की, उसमें जो आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में हमें कार्य करना चाहिए है? तो मनमाना कार्य बिल्कुल नहीं है? और मत परा का प्रभुपाद जी अर्थ क्या बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है क्या, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मत परा का ये मतलब है कि और कुछ दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं मत चित्त सततम हो, सततम माने हमेशा मुझमें चित्त वाले हो, है ना, या कृष्ण के प्रति सचेत, है ना, मतलब जितने भी विचार हैं वो सब कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, है ना। तो आज हम एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि एक राजा है, उसका पूरा परिवार क्या है, कृष्ण चित्त वाला है, मत चित्ता, कृष्ण चित्त वाले, सबका चित्त जो है ना कृष्ण में लगा हुआ है। एक ऐसा राजा है उसके जितने नगरवासी वो भी कृष्ण भावना भावित हैं, उसके जो है सेना के जो सैनिक हैं वो भी सब कृष्ण भावना भावित हैं। तो ये घटना है युधिष्ठिर महाराज का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, अर्जुन घोड़े के पीछे हैं है? और वो जो घोड़ा है वो चंपापुरी में पहुंचता है। चंपापुरी के राजा हैं हंसध्वज। तो वहां जब घोड़ा पहुंचा तो अर्जुन उस घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे और राजा हंसध्वज ने क्या सुना, अपने दूत के मुख से सुना कि उनके देश में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए अर्जुन का आगमन हुआ है। तो अपने मंत्रियों भाइयों और पुत्रों के साथ विचार करने लगे। अब देखो राजा विचार कर रहे हैं, जैसे इसमें आज के श्लोक में बताया है कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, चित्त से सब कर्मों को मुझमें संन्यस्त करके। तो अब क्या करना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। अर्जुन आए हैं कृष्ण के महान भक्त है, घोड़े की रक्षा में, और घोड़ा उनके राज्य में आया है, तो विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उन्हें अपने जो है ना इंद्रिय तीर्थ से कोई मतलब नहीं है, विचार कर रहे हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। तो किससे चर्चा कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से, अपने भाइयों से, अपने पुत्रों से चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, देखिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है कैसे बात करता है। कहता है क्या मैं यहां आए हुए अर्जुन के घोड़े को अपने बल से पकड़ लूं है? क्योंकि युद्ध स्थल में मैं सेना की व्यूह रचना करके महाबली अर्जुन से अपने देश की रक्षा कर सकता हूं। ऐसा करने से यदि श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन दिख पड़े तो महान लाभ होगा। देखा क्या लाभ होगा, अर्जुन का दर्शन होगा, ये बहुत बड़ा लाभ होगा। मतलब और कोई लाभ नहीं सोचते है ना, सामान्य व्यक्ति है ना क्या सोचता है, ये लाभ वो लाभ दुनिया भर के लाभ, ये वो क्या सोचते हैं, अर्जुन का दर्शन होगा महान लाभ होगा, क्योंकि जहां अर्जुन है वहां स्वयं श्री कृष्ण भी विराजमान रहते हैं, इसमें संशय नहीं है। महालाभश्च भविता दृश्यते हरि सेवकं यत्र अर्जुनस्तत्र हरि स्वयं तिष्ठत्य संशयम्। अब देखो कैसे विचार कर रहे हैं, मेरे जीवन का क्या लाभ है, मैं वृद्ध हो चला, कौन कह रहा है, राजा हंसध्वज, मैं वृद्ध हो चला पर अभी तक अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाया है? मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण है द्वारका में, लेकिन अपने जीवन काल में अभी तक मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाया, तो मैं वृद्ध हो गया है? इसलिए मेरे वीर योद्धा युद्ध के लिए यात्रा करें और मैं रणभूमि में चलता हूं है? तो युद्ध करने का लाभ क्या है, अर्जुन का दर्शन होगा, अर्जुन के साथ कृष्ण जरूर मिलेंगे। नमया वीक्षिता कृष्ण वृद्धे नापि सुचक्षुषाम तस्मान्यर्यान्तु मे वीरा युद्धार्थम याम्यहम रणम्। अब इस प्रकार से राजा हंसध्वज हर्ष के साथ सेना को साथ लेकर के युद्ध के मुहाने पर डटकर खड़े हो गए। अब देखो उनके योद्धा भी कैसे हैं, सब योद्धा भगवत भक्त हैं, सब योद्धा शुद्ध भक्त हैं भगवान के है? सदा दीनों पर दया करके उन्हें दान देने वाले हैं और एक पत्नी व्रती हैं सब है? राजा से सम्मानित और राजसी प्रिय वचन बोलने वाले सब योद्धा हैं। सर्वे ते वैष्णवा वीरा सदा दान परायण, एक पत्नी व्रत युता सम्मता से प्रियम वदान। और राजा हंसदस भी देखिए उनका क्या नियम है, दूर देश से भी कोई नौकरी के लिए अगर आता तो राजा उस व्यक्ति से सबसे पहले यही कहते थे, क्या कहते थे कि तुम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हो तो मैं रख सकता हूं, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं, ना तो सूरता नहीं चाहिए, ना कुलीनता चाहिए, ना पराक्रम चाहिए, मैं तो उसी वीर को अपने घर और राष्ट्र में स्थान देता हूं जो केवल अपनी एक ही पत्नी में प्रेम करने वाला हो और भगवान विष्णु की भक्ति से संपन्न हो। दो बातें है ना, एक पत्नी से प्रेम करे और भगवान विष्णु की भक्ति से संपन्न हो, उसको ही अपने राज्य में रखेंगे और किसी को राज्य में नहीं रखते। अगर भगवान विष्णु के भक्त नहीं हो तुम तो जाओ, मुझे अपने राज्य में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। साफ नियम था, पक्का नियम। इस प्रकार जो अन्य महाबली योद्धा भी कामदेव के प्रबल वेग को अपने भीतर धारण कर लेते हैं वे यहां रह सकते हैं। एक पत्नी इमृतम तात यदि ते विद्यते न ततस्त्वां धारयिष्यामि सत्यमे तन्द्रदीनिते न शौर्यं न कुलीनत्वं न चाक्वापि पराक्रमः सदारे रसिकं वीरं विष्णु भक्ते समन्वितं वासयामि गृहे राष्ट्रे तथान्येऽपि हि सैनिकान् अनंग वेगं स्वान्तेये धारयन्ति महाबलान्। अच्छा तो राजा हंसदस के पांच पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और पांचवा महाबली सुधन्वा। सबसे छोटा और महाबली सुधन्वा पांचवा है। तो हंसदस जो है राजा अपने पुत्रों को साथ लेकर के अर्जुन की सेना से टक्कर लेने के लिए खड़े थे और नगाड़ा बजवाए, अपनी सेना को व्यूह के आकार में खड़ा कर दिया। अब देखिए क्या होता है, सुधन्वा, सुधन्वा जो सबसे छोटा पुत्र है उसको बहुत उत्साह है युद्ध में, क्यों, अर्जुन का दर्शन होगा। तो सुधन्वा राजा की आज्ञा से अपना उत्तम धनुष लेकर सबसे पहले ही राजा के पास जाने को तैयार हुआ, तो अपनी माता के चरणों में प्रणाम करता है। अब देखो माता भी कितनी महान भक्त हैं, अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और क्या कहा, माँ मैं विख्यात वीर अर्जुन से युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में जा रहा हूं और उन पांडु पुत्र द्वारा सुरक्षित उस हरि को जीत कर ले आऊंगा। हरि का मतलब दो है, भगवान कृष्ण, और हरि का मतलब घोड़ा भी है, तो घोड़े को जीत के ले आऊंगा अर्जुन को हरा करके, और हरि को जीत के ले आऊंगा मतलब कृष्ण को जीत करके ले आऊंगा, तो दो मतलब है। हाँ हनुमदन मातरम योद्धे पार्थम गच्छामि योद्धितुम हरिम ताम तमानयिष्यामि रक्षितम पांडवे नहीं। अब देखो माता क्या कहती है, कितनी वीर माता है, कृष्ण भक्ति में कितने आगे है। माता बोली बेटा रण में जाकर हरि को जीतकर अवश्य मेरे पास ले आओ, परंतु लाना मुक्तिदाता हरि को, चार पैर वाले हरि को नहीं लाना, चार पैर वाले हरि को नहीं लाना, मुक्तिदाता हरि को लाना जीत करके। गच्छ पुत्र हरिम योद्धे विजित्य मम सन्निधो हरिम चतुष्पदम त्यक्त्वा तम समानय मुक्तिदम। अब माता क्या कहती है ध्यान से सुनिए, देवर्षि नारद उन श्री कृष्ण के चरित्रों का अनेक बार वर्णन कर चुके हैं, मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया कृष्ण का, लेकिन नारद जी से कई बार कृष्ण का चरित्र सुना है। मेरे पतिदेव ने भी आजकल युद्ध स्थल में बहुत से वीरों पर विजय प्राप्त की है, परंतु अभी तक उन्हें अपने नेत्रों से कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सका है। पुत्र जिन हरि का गुणगान लोग दिन रात किया करते हैं उनका दर्शन मुझे जिस प्रकार हो सके वैसा प्रयत्न कर। माता अपने पुत्र को आदेश देती है, तू लड़ाई कर, जैसे भी हो हरि का दर्शन करा मुझको। बहुधा नारद प्राह तस्य कृष्णस्य चेष्टितम् मद्भर्त्रा विजिता वीरा भावो पीरणांगणे न चैका कंस हंतायम वितृष्टा स्वयं चक्षुषाम रात्रिम दिवा हरिम रोते तम पश्यामि तथा कुरु। मतलब रानी कहती है कि मेरे पति ने बहुत से योद्धाओं को पर विजय प्राप्त की है, लेकिन कृष्ण पर विजय नहीं प्राप्त की है कि कृष्ण का दर्शन तो होता है ना। तो आज प्रायः वही कर्म करना जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, ठीक है। देखो आज के श्लोक में जो कहा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा कर्म कर कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वे शीघ्र वशीभूत नहीं होते बल्कि चेष्टा करने पर दूर से दूर भाग जाते हैं कृष्ण। बहुधा कुरु तत्कर्म ये नुष्यति के समस्तमेति दूरां दूरम पलायते। अगर अपना जो ना बल प्रयोग करोगे कृष्ण के ऊपर तो दूर से दूर जाएंगे, ये भक्ति से बस में हो सकते हैं। तो ऐसा कर्म करो कि वो प्रसन्न हो जाए तो अपने आप दर्शन देंगे, माता कहती है। परंतु तू अपना सौभाग्य तो देख ले कि वे ही महाबली श्री कृष्ण आज तेरे नेत्रों के विषय में आने वाले हैं, तेरे नेत्रों को दर्शन देने वाले हैं, वत्स तेरा कल्याण हो। यदि तू किसी प्रकार अर्जुन को रण में छका देगा, व्याकुल कर देगा, तो श्री कृष्ण तेरे वशीभूत हो जाएंगे। इतनी वीरता से युद्ध करो कि अर्जुन को हराओ तुम, तो कृष्ण तुम्हारे बस में आ जाएंगे। चक्षुर्विषय मापन्ना पश्य भाग्यम महाबलं अर्थम धारय भद्रम ते वशगस्ते हरिर्भवेन। बेटा मैंने सुना है कि श्री कृष्ण अपने भक्त को थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ सकते, क्या समझे? माता कहती है कि मैंने सुना है, क्या सुना है? कि श्री कृष्ण अपने भक्त को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। जैसे क्या? जैसे वन में गए हुए बछड़े को छोड़कर गऊ घर नहीं लौटती, वन में गए हुए बछड़े को छोड़कर कि गऊ कभी घर में नहीं लौटती है, उसी तरह श्री कृष्ण भी अपने भक्त को विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ते। उनके सामने जाकर तू भयभीत ना होना, क्योंकि श्री कृष्ण से डरने वाला जीवित नहीं रह सकता। स्वभक्तम न परित्यज्य मना पुत्र मया श्रुतम यथा वन गतम वत्सम त्यक्त्वा नायाति सौरभि तथापत्सो न कृष्णोऽपि स्वजनं परिमुञ्चति तदग्रे न भयं कार्यं कृष्णान् भीतो न जीवति। यदि तू डर गया, क्या समझे? यदि तू डर गया तो सारे जनता और संबंधी लोग मुझे हंसेंगे कि तेरा पुत्र श्री कृष्ण को देखकर रण से विमुख हो गया। तो माता कहती है कि डरना नहीं, युद्ध करना। प्रहसिष्यन्ति मां सर्वे लोका संबंधिनः तथा तव भद्रे सुता कृष्णं निरीक्ष्य विमुखो भवन। पुत्र हाँ, तू आज रण में धराशायी हो जाए तो मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त होगा, लेकिन निंदा नहीं कराना मेरी, माता ऐसी कहती है। बेटा श्री कृष्ण के सम्मुख मरने वाला मनुष्य क्या मरा हुआ कहलाता है? माता क्या कह रही है, देखो कितनी वीर है, कितनी भक्त है, हैं? अपने पुत्र को कहती है कि श्री कृष्ण के सम्मुख मरने वाला मनुष्य क्या मरा हुआ कहलाता है? नहीं, वो तो अपने सहित अपनी सारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। हरे किम सम्मुखा पुत्र पतिता पतितो भवे तेने विचोद्रता सर्वे आत्मना च के विंशति। भूतल पर वही सारी स्त्रियां रोदन करें जिनके पुत्र पौत्र भगवान श्री हरि की ओर नहीं जाते, वे स्त्रियां रोएं, मैं क्यों रोऊंगी? अगर तुम श्री कृष्ण के सामने मर जाएगा तो मैं क्यों रोऊंगी? वे स्त्रियां रोएं जिनके पुत्र और पौत्र श्री कृष्ण के सामने नहीं जाते। रोदनम पुत्रता सर्वा कुर्वन्तु भुवयोसिता या सम पुत्राश पौत्राश न ब्रजन्ति हरिं पतिं प्रतिं। अब सुधन्वा क्या कहती है? सुधन्वा क्या कहते हैं? माँ मैं तुम्हारे सारे कथन को पूर्ण करूंगा और रण में जी जान से लड़कर हरि को ले आऊंगा। अब हरि का मतलब घोड़ा भी है और कृष्ण भी है। पुरुषार्थ करना मेरे अधीन है, विजय रूप फल देव के हाथ में है, परंतु युद्धस्थल में भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदि मैं विमुख हो जाऊं तो तुम्हारे पेट से पैदा हुआ ना कहूं। अगर कृष्ण को देखकर के अगर मैं भागा डरा तो तुम्हारे पेट से पैदा हुआ मैं नहीं हूं और ना ही मुझे सदगति की प्राप्ति हो। सर्वम ते भाषितम माता करिष्ये हरिमानये पौरुषम हि मया कार्यम जयो देवे प्रतिष्ठितम तबोदरेण संजात तत्र चेत केशवम प्रभुम विलोके विमुखो भूयाम गच्छेयम संगतिम हि नहि संगतिम नहि। इसके बाद अपनी पत्नी के पास जाता है सुधन्वा प्रभावती, वो भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन उसने उचित बात कही कि अभी आप जा रहे हो तो आप लौटोगे नहीं, जो भगवान के पास जाता है तो लौट के नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे वंश का जो है मुझे चाहिए एक वंशधर, तो मुझे पुत्र दे के जाओ। तो इस प्रकार से जो ना प्रभावती ने उसको विवश किया, लेकिन वो जो है कृष्ण की प्रसन्नता के ही लिए, वो संतान उत्पन्न करने के लिए जो है उसने जब जो है ज्यादा आग्रह किया तो फिर उसमें देर लग गई उसको, तो फिर स्नान किया, फिर शुद्ध हुआ, फिर महल से निकलकर जब युद्ध के लिए चला तो हंसध्वज ने अपने सेनापति से कहा। अब क्या कहा हंसध्वज ने कि सुधन्वा नहीं आया है, मेरी आज्ञा को वो नहीं जानता है, वो कड़ाहे को भूल गया, तेल के कड़ाहे में उसको डाला जाएगा, जो कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करने के लिए नहीं आएगा उसको तेल के कड़ाहे में जिंदा डाल दिया जाएगा। तो सुधन्वा नहीं आया, पिता कह रहे हैं अपने पुत्र के बारे में कि वो क्यों नहीं आया। उस नीच पुत्र ने प्रयाण करने के लिए घोषणा करने वाले इस नगाड़े का उल्लंघन कैसे कर दिया, इस समय मेरे घोड़े उस यज्ञ संबंधी अश्व के पास और मदमत गजराज धन को जीतने वाले अर्जुन के पास जा पहुंचे हैं, परंतु सुधन्वा पीछे रहकर कौन सा निंदित कर्म कर रहा है, इसलिए कुछ बलवान सैनिक हाथ में मुद्गर लेकर जाएं और श्री कृष्ण से विमुख हुए उस दुष्ट के बाल पकड़कर पृथ्वी पर घसीटते हुए उसे इस कड़ाहे के पास ले आए। पिता देखो अपने पुत्र के लिए कह रहा है कि कृष्ण से विमुख है मेरा पुत्र। अब पिता को पता नहीं कि वो कृष्ण का कितना बड़ा भक्त है, लेकिन कड़ाहे पर डाला जाएगा उसको। प्रयाण द्वंद्व वीरम प्रयाण द्वंद्व वीरियम लंघिता पुत्र के अण किम हरियो मे हरिम प्राप्त गजामत्ता धनंजयम सुधन्वना पृष्ठता किम कृते कर्म कुत्थितम तस्मान गच्छन्तु यवना सबला मुनकरान्विताम केशेवा कृष्यतम दुष्टम विकृष्यन्तु धरातले आनयन्तु कर्णाहर्ष पार्श्वे कृष्ण परामुखम। अब सुधन्वा को लाया गया तो सुधन्वा पिता को क्रुद्ध हुआ देखकर उनके चरणों में प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। तब राजा रोष में भरकर सुधन्वा से बोले कुपितं पितरं वीक्ष्य नमस्कृत्य पुनस्थितां सुधन्वानं ततो राजा प्रत्युवाच रुषान्वितां। हंसध्वज ने कहा किसने कहा हंसध्वज ने कहा वीर किसने तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। सुधन्वा कहने लगा महाराज घर में आपकी पुत्र वधु मुझसे जलांजलि देने वाले पुत्र की याचना करने के लिए उद्यत हो गई थी, इसी कारण मुझे इस रण क्षेत्र में पहुंचने में विलंब हो गया। अब देखो राजा क्या कहते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए क्या कहते हैं, निश्चय ही तू बड़ा मूर्ख है जो तूने इस संग्राम में सम्मुख आए हुए साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन की उपेक्षा कर दी, इससे तो तूने हमारे कुल में दाग लगा दिया। ध्रुवम मूर्ख है तरस्तम ही यदि कृष्णोत्र सम्मुखाम दृष्टा संग्रह साक्षात तो या नो वंचितम कुलम। दुरात्मन भगवान श्री हरि की कृपा बिना केवल जलदाता पुत्र से इस संसार में तुझे अथवा मुझे कभी सदगति नहीं प्राप्त हो सकती है। कृष्ण से विमुख होकर के पुत्र क्या करेगा, पुत्र से क्या सदगति प्राप्त होगी। और ना भी पितर ही किसी प्रकार से तृप्त हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों की तृष्णा पूर्ण करने में तो वरुण भी समर्थ नहीं है। ना तो दिया मदि यात्रे जल देने हरिम विनाम न चा तृप्तिम उपायांति दुरात्मं ते कथंचन वरुणस्यापि नो शक्ति पिपासा पूर्णे नृणाम। पुत्राधम कहते हैं नीच पुत्र, यदि भगवान श्री हरि की कृपा बिना केवल पुत्रवान होने से उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती तो अभी तक सभी कुत्तों और स्वरों को भी स्वर्ग मिल गया होता। कुत्ते स्वर भी तो स्वर्ग पा लेते अगर पुत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो। पुत्रणो यदि गच्छन्ति स्वर्गम मोक्षम श्रुताधम तदा सुनाम सुकराणाम स्वर्गस्यातु हरिं विनाम। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले महाबली अर्जुन घोड़े की रक्षा करते हुए यहां आ गए हैं और जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण युद्ध के अवसर पर अर्जुन को एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ते, ऐसी दशा में श्री कृष्ण को अपने नगर में आया हुआ सुनकर भी तेरा मन काम के वशीभूत कैसे हो गया, तेरे बल और विचारों को धिक्कार है और तूने यह जो पुत्र प्रदान रूप धर्म कार्य किया है, तेरे इस धर्म को धिक्कार है। हयम पालय तुम प्राप्त सवसाची महाबला क्षण में कम जगन्नाथो न मुंचते रणेर्जुनम दिखते बलम धिंग विचारम दिग धर्मम यस्त्वया कृतम श्रुत्वा कृष्णम पुरम प्राप्तम कथम कामे गतम मनः। आज तिल के तेल से भरे हुए कड़ाहे में तुझे अवश्य डालूंगा, क्योंकि तू मलिन मन वाला है, मलिन मन वाला है, कामरत है, कृष्ण विमुख है, तुझको पुत्र को मैं कंठ पर्यंत उबलते हुए तिल के तेल में अवश्य डाल दूंगा। एवं विधम कृष्ण परांगमुखम त्वाम तप्ते कटाहे किल निक्षिपामी मलिमसम कामरतम कुपुत्रम आकंठ मग्नम तिल तैरने पूर्णे। अब इस बीच में कुछ और भी घटनाएं हैं कि उनके शंख और लिखित नाम के दो पुरोहित थे राजा के, तो फिर उनके आदेश से क्या हुआ कि राजा हंसध्वज ने सुधर्मा को तेल के तपे हुए कड़ाहे में डाला। तो सुधर्मा ने उस समय जो है अब क्या तैयारी की, इस नाम से शुद्ध होकर दिव्य वस्त्र धारण किए थे सुधर्मा, और अपने वक्षस्थल पर तुलसी दल की बनी हुई माला लटका ली और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। ऐसे सुधर्मा को उठाकर सैनिकों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। सुमतिस्तम तथा भूतम स्नातम दिव्यांबरावृतम तुलसी दल जाम माला धारयंतम महोरसी स्मरंतम वसुदेवस्य तनयम चापी केशवम उत्थापि।